अब जवानी। मूसा फिरौन के महल में पल के बड़े हो गए। आते जाते बड़ी मोहब्बत इज्जत प्यार था। एक दिन एक वाक्या हो गया, उसका जिक्र आप पढ़ेंगे सीरत मूसा में आयत 14 से 21, 14 से 21। टॉपिक लिख लीजिए ज़रबे कलीम। किस किस ने ये लफ्ज़ पहले सुना हुआ है, आज पता लग जाएगा ये है क्या। कलीम कौन थे? मूसा कलीमुल्ला लक़ब था। ज़र्ब घोंसा। इतना स्ट्रॉन्ग नबी अल्लाह का बंदा, किसी को ऐसे ही मुक्का मारा वो बेचारा मर गया। और बुखारी की रिवायत है कि मूसा की मौत का वक्त आया, मलकुल मौत आ गया। और अम्बिया कराम के बारे में अल्लाह ताला की एक सुन्नत है कि उनको बता के और पूछ के जान निकाली जाती है। ये सही बात है, मैं बुखारी का रेफरेंस भी दे रही हूँ आपको साथ। मलकुल मौत आया, मूसा से कहने लगे मूसा जी आपकी मौत का वक्त आ गया तो जान दे दीजिए। मूसा ने ज़ोर से घुंसा मारा, मलकुल मौत की आंख फूट गई, रोता हुआ अल्लाह के पास पहुँच गया। अल्लाह ये तेरा बड़ा ही ज़बरदस्त नबी है, मैंने जान मांगी तो उसने मुझे मुक्का मार दिया। कहा अच्छा क्या चाहता, अभी नहीं मरना चाहता? कहा नहीं। कहा जाओ फिर उसके पास जाओ, एक बैल ऑक्स, एक बैल ले गए। कहा कि मूसा अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी सी रुख्सत दे दी है, ये बैल है इस पे हाथ रख ले, आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे ना उतने साल आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अच्छा फिर उसके बाद क्या? कहा उसके बाद फिर मौत, मौत तो आनी है। कहा अच्छा फिर जो तब आनी है तो फिर अभी जान ले लो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये थी ज़र्बे कलीम, आइए पढ़ते हैं इसको। और ये एक अचानक मामला था जो मूसा के साथ हुआ। वलम्मा बलगा शुद्दहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने इनको हिकमत और इल्म अता फरमाया, नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त में शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे, यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया। ये एक तो इनके दोस्तों में से था और दूसरा इनके दुश्मनों में से। इसकी कौम वाले ने इसके खिलाफ जो इसके दुश्मनों में से था इससे फरियाद की, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको मुक्का मारा जिससे वो मर गया। मूसा कहने लगे ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। फिर दुआ करने लगे। अब कत्ले ख़ता हुआ है, याद रखिए कत्ले अमत नहीं है। काला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहू। फिर दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया तो मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया। ऐसे लगता है इधर मूसा ने आधे मुँह से दुआ मांगी, अल्लाह ने कहा ठीक है मैंने आपको माफ़ कर दिया। एक तो ख़ता थी, दूसरी नदामत थी। ये आपके मेरे सीखने की बात है, वो बख्शिश और बहुत मेहरबानी करने वाला है। तो मांग लीजिए आप भी ये दुआ, पढ़िए रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। हर गुनाह को याद कर कर इस दुआ को पढ़िए, अल्लाह ताला आपके मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। काला रब्बी बिमा अनअमत अलैया, कहने लगे मेरे रब जैसे तूने मुझ पर यह करम फरमा दिया मैं भी अब हरगिज़ किसी गुनाहगार का मददगार न बनूँगा। यानी अपनी गलती से सीख गए, ये भी सीखने की बात है इस रुकू में, अपनी गलतियों से सबक सीखिए। सुबह ही सुबह डरते हुए अंदेशे की हालत में खबरें लेने शहर में गए कि अचानक वही शख्स जिसने कल इनसे मदद तलब की थी इनसे फरियाद कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि इसमें शक नहीं कि तू तो बिल्कुल ही राह से भटका हुआ है। फिर जब अपने और इसके दुश्मन को पकड़ना चाहा वो फरियादी कहने लगा कि मूसा क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया मुझे भी मार डालना चाहता है? तू तो मुल्क में जालिम और सरकश होना चाहता है और तेरा इरादा ही नहीं कि मिलाप करने वालों में हो जाए। यानी उस शख्स ने मूसा पे ही इल्ज़ाम लगा दिया। और इतने में क्या हुआ, वजा रजुल मिन अक्सल मदीनति यसआ, करीब वाले ने झूठ बोल के मूसा पे इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह ने दूर से मदद भेज दी। और अल्लाह ऐसा ही करता है। कैसे? शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा है मूसा यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू जल्द चला जा मुझे अपना खैर ख्वाह मान ले। बस मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से खौफजदा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए और कहने लगे ऐ परवरदिगार मुझे ज़ालिमों के गिरोह से बचा ले। काला रब्बी नज़्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो क्या सीखा? इस रुकू में भी बहुत सारी बातें हैं सीखने की। पहली बात क्या है? मुश्किल और मुसीबत में सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। किसी की मदद करने से पहले देख लेना चाहिए कि कहीं वो आदि मुजरिम तो नहीं। अल्लाह की नेमतों की कदर करनी है, शैतान की कार्रवाइयों से बचना है। जो दुआएं मूसा ने मांगी वो हमने भी याद करनी है और अल्लाह ताला से मग़फ़रत की दुआ करनी है। यहाँ तक थी मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हिजरत से पहले की। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेट करें तो मक्की दौर गुज़र गया। आप देखिए उसमें आपके ऊपर भी बहुत सारी तकलीफ़ें आईं, लोगों ने आपके कत्ल की कोशिशें की। तकाबुल करें तो बहुत कुछ है, मैंने शेख बिलुल जन्ना में किया भी था इस सूरत में कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मूसा की सीरत के अंदर बात है। लेकिन यहाँ से समझ लीजिए ये असबाब बन रहे थे मूसा के मिस्र से निकल कर मदियन जाने के। तो इसलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसमें इंशाल्लाह हमें बात समझ आती है। 22 से 28 टॉपिक लिखिए, हिजरत मदियन के तोहफे, रोटी कपड़ा और मकान। थोड़ा सा समझ लीजिए फिर कहानी को वाजे समझ जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ले ख़ता हो गया। फिरौन के दरबारी जो पहले ही हसद करते थे वो मूसा के पकड़ने के मशवरे देने लगे। फिरौन ही की कौम का एक शख्स मददगार बनाकर अल्लाह ने भेजा, मूसा को कहा इधर से निकल जा। क्योंकि उस दौर का रिवाज क्या था या कानून क्या था कि अगर किसी से कत्ल हो जाए और वो मिस्र की हद से बाहर चले जाए, जैसे आज भी ऐसा ही है, अपने मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करे तो दूसरी तरफ चला जाए, तो ज़ाहिर है कि उसको पकड़ नहीं सकते। और 10 साल लगते थे मुकदमा ख़त्म होने में, यानी अगर कोई कातिल अब उस शहर छोड़ के दूसरी जगह जा चुका है, 10 साल बाद वापस आएगा तो वो मुकदमा डिलीट कर दिया जाएगा। ये कानून था उस वक़्त मिस्र का। मूसा को ये सब कोई नहीं था पता, लेकिन मूसा के रब को पता था। तो अल्लाह ताला ने अब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बनाया। ना मूसा ने प्लान किया, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ना कुछ पहले से एजेंडा बनाया। लिखी अपने अमल की बातें, कुछ काम अचानक ज़रूर करने पड़ेंगे। बहुत सारी प्लानिंग भी बाज़ दफ़ा तरक्की के रास्ते में रुकावट होती है। बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान कर लेनी चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें गो विद द फ्लो पे करनी चाहिए। क्योंकि अगर मूसा शॉपिंग करते, तैयारी करते, बैग खरीदते, वीज़ा लेते, तो फिर याद रखिए कि पीछे से पुलिस आती और मूसा को पकड़ के ले जाती। ज़ाहिर सहरा में जा रहे थे और उधर जूते दूसरे, कपड़े दूसरे। और आप ज़रा सा सोचिए कि मूसा जब वहाँ से निकले तो कैसे थे। दिल दुखा हुआ, माँ तक को बताने का वक्त नहीं मिला, पाँव भी ज़ख्मी, लेकिन निकल पड़े। अपने अमल की बात लिखिए। बाज़ दफ़ा लीडर्स को फौरी फ़ैसले भी करने पड़ते हैं, टाइम ही नहीं होता किसी से पूछने या बताने का। अगर नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह उसमें खैर ज़रूर डालेगा। और मूसा के साथ ऐसा ही हुआ। कैसे हो गया? वलम्मा तवज्जह तिल्का मदयन, और जब मदियन की तरफ मुतवज्जह हुए तो कहने लगे मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा। अल्लाह के आसरे पे चल पड़े, कुछ नहीं पता किधर जाना है। या फिर अपने प्यारे नबी की मदीना हिजरत का सफ़र याद कीजिए। हिजरत की राहें सिद्दीक के साथ साथ कैसे निकले, तो जान की कीमत 100 ऊँटते, जिंदा या मुर्दा। और मक्का वाले दुश्मनी हो ना हो, इनाम पाने के लालच में आपका पीछा कर रहे हैं। और कैसे सुराका बिन मालिक आपके करीब भी पहुंच गया लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। और कैसे फिर सिद्दीक को नेकियां करने के मौके मिल गए कि गुजारे गार बन गए, आप ही का ग़ुलाम राहबर बन गया, बकरियां चरा लाता, वही दूध पिला जाता, आपकी बेटी को नेकियों का मौका मिला और वो खाना लेकर आती। याद रखिए, ये लिख लीजिए, कभी कभी अल्लाह सिर्फ आपसे अकेले नेकी नहीं कराता, आपकी वजह से आपके घर वालों से भी नेकियां ले लेता। ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे नेकियों में इतना जमा दे कि मुखालफत करने की बजाय मेरे घर वाले भी मुआविन और मददगार बन जाएं। जैसे कि सिद्दीक की बेटी और सिद्दीक का ग़ुलाम मुआविन बने नबी सल्लम के सफ़र हिजरत में, फिर क्यों ना अल्लाह के नबी कहें कि सिद्दीक की तो उन 3 रातों की नेकियां जो मेरे साथ सफ़र हिजरत में गार में गुजारी, उम्र की सारी नेकियों से भरी हैं। तो मुश्किल हालात में साथ देने वाले अल्लाह उनके अजर ज़ाया नहीं करते। चलिए, हुआ क्या? मूसा मदियन पहुँच गए, मिस्र से करीब शहर मदियन था। मूसा चले गए, अब क्या हुआ, मदियन के पानी पर जब आप पहुँचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहाँ पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती दिखाई दी। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस ना लौट जाएं हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। बस आपने खुद इन जानवरों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ हट आए और कहने लगे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये है आज की दुआ। मैंने अपने उस्तादों से ये बात सुनी है, कहते हैं कि कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आ जाता है कि ये समझ ही नहीं आती कि क्या मांगूँ और क्या ना मांगूँ। एक मांगू तो दूसरी चीज़, दूसरी मांगू तो तीसरी, तो उस वक़्त ये दुआ मांगो कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, परवरदिगार जो कुछ भलाई तो मेरी तरफ उतारे मैं इसका मुख्ताज हूँ। मतलब क्या, सब कुछ चाहिए। देखिए परदेसी, आप ज़रा मूसा के गुण गिनते जाइए क्योंकि आगे इनकी शादी होने वाली है। कत्ल का मुकदमा सर पे, परदेसी जूते भी पाँव में नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, घर नहीं, लेकिन उन औरतों से कुछ नहीं कहा कि अब मैंने तुम्हारे जानवरों को पानी पिलाया तो तुझे कुछ दे दो, क्योंकि जिनकी नज़रें अल्लाह पे होती हैं वो बंदों के हाथ नहीं देखते, अल्लाह खुद दिलों में डाल देगा, वो दिलों का मालिक है, मैं कुछ कहकर क्यों बुरा बनूं। ये हालत थी मूसा की, बैठे हैं और दुआ मांग रहे हैं, रब्बी नीलिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। यहाँ बख्तियारी बने, बिल्कुल अपने आप को इस वक्त आप एक बैगर समझें, तेरे दर के भिखारी, तेरे दर के सवाली, मांग लीजिए जो मांगना। इल्म की महफिल है, नेकी का काम कर रहे हैं, रोज़े हैं, और अल्लाह आपकी भी सारी ख्वाहिशात, आरज़ुएं और तमन्नाएं जो वाकई आपके हक़ में बेहतर, उनको पूरा कर दें और आने वाले फितनों और आजमाइशों से बचा लें। ये दुआ इधर बैठ के मांग रहे हैं और घर में वो बच्चियां जाके बाप को बताती हैं। ये बच्चियां कौन थीं? कहते हैं कि ये शुएब नाम के एक शख्स की बेटियाँ थीं। वो वही शुएब थे जिनका जिक्र कुरान में अक्सर आता है या कोई और थे? ये आप इस वक्त मौजू बहस नहीं। भाई कोई था नहीं, बाप नबीना थे, बकरियां चरा कर दूध बेचकर गुजारा करती थी, मजबूरी में घर से निकली मगर मजबूर ना हुई। बकरियों को पानी पिलाने के लिए जब कुएं पे पानी पिलाती तो वहाँ मर्द भी होते, चरवाहे शेफर्ड्स, तो उनके अंदर घुली मिली नहीं, अलग खड़ी रहती, सब पिला के बारी बारी जब चले जाते तो जो बचा खुचा थोड़ा बहुत पानी होता, क्योंकि आपको पता है कि कुएं का पानी निकलता है फिर ख़त्म भी हो जाता है, फिर कुछ देर छोड़ दें अगले दिन आए तो फिर भरा होता है, थोड़ा बहुत पानी ऊपर होता तो ये बेचारियाँ वो पिला कर आ जाती। इससे भी अमल की बात सीखें, मजबूरियों में, मुश्किलात में, आजमाइश कोई आ जाए, अल्लाह ना करे कि किसी का कमाने वाला ना रहे, तो औरत घर से निकल सकती है लेकिन मर्द नहीं बन सकती। एक जुमला लिख लें, जो जॉब आपको मर्द बना दे उसको छोड़ दें। हया में रहते हुए, तकाजों को पूरा करते हुए, मजबूरियों में, हयाओं के अंदर अपने सतर की हिफाजत करती, किसी से कोई बेतकल्फी नहीं, ना मूसा ने उनसे कोई बुरी बात की, ना अच्छी की, ना हाल अखवाल पूछा, ना कहानियाँ घड़ी, और जानवरों को पानी पिलाकर चली गई। तो यहाँ से आपको एक औरत का किरदार दिखता है। चलिए आगे देखते हैं, कहानी चल रही है आगे से। इतने में इन दोनों औरतों में से एक इनकी तरफ शर्म और हया से चलती हुई आई, कहने लगी कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है इसकी उजरत दें। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुँचे और इनसे अपना सारा हाल बयान किया तो वो कहने लगे, अब ना डर, तूने जालिम कौम से निजात पाई है। इन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जी, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत भी हो और अमानतदार भी हो। मजबूती कैसे देख चुकी थी, इतना बड़ा पत्थर मूसा ने अकेले ही उठा लिया और कुएं का पानी पिला दिया जान बकरियों को, और अमानतदार ऐसे हैं कि लड़कियों की तरफ निगाह भर के ना देखा। इस बुजुर्ग ने कहा, मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ। नोट करें अमल की बातें, लड़की का बाप भी रिश्ता पेश कर सकता। हम कहते हैं लो ताने सुनवाने हैं बेटी को, कहेंगे घर आके दे गए थे। कई दफ़ा ऐसी ख्वाहिशात होती हैं कि फलां के बेटे से मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, पूछा जा सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। और मेहर क्या है, इस मेहर पर कि आप 8 साल तक मेरा काम काज कर रहे हैं, घर दामाद, कोई बुरी बात नहीं है अगर मजबूरी है तो। चलिए हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान के हैं। ये हरगिज़ नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्क़त में डालूं। अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खैर तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो, यानी चाहें तो मैं 8 साल कर लूं, मिनिमम तो ये है, और अगर दिल चाहा तो मैं 2 साल बढ़ा के 10 पूरे कर दूंगा। हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह है और कारसाज है। ये है आसान शादी, ये है मूसा दामाद बनते हुए। पहले तो ज़रा सा मैं और आप लड़की वाले नाते से देख लें। अगर आपकी बेटी के घर ऐसे लड़के का रिश्ता आ जाए तो आप करेंगी? जिसके पाँव में जूते नहीं हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं, जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, जो बेचारा रोटी पानी का मोहताज है। कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को सिर्फ उस मर्द की शराफत देखकर ब्याह देंगे। जी, ये आज के हमारे इस माशरे का ड्रॉबैक है। हम तो बड़ी गाड़ियाँ, चकाचौंध, अकेला बेटा, और उसके पास ये है करोड़ों का वारिस। हमारी तो इतनी लंबी लिस्ट है, फिर कहीं रिश्ता देंगे? याद रखिए, जुल्म करते अपनी बेटियों के साथ। जिसने कोई दुनिया की चीज़ देखकर अपनी बेटी किसी मर्द के नाम डाल दी, बाद में फिर वो बेटी को ना बुरा कहें, फिर बेटी दुनियादार हो जाएगी। और जिसने सिर्फ दौलत को देखा, अल्लाह उसी को आजमाइश कर देगा। आप देखिए कि मूसा थके हुए आए, परेशान भी थे, फिर भी मूड ख़राब नहीं हुआ। ये नहीं कहा कौन मेरी खिदमत करे, हम तो घर जाएं तो कहते हैं आओ वो हमारे पाँव दबाओ, बल्कि उन औरतों की खिदमत भी कर दी। कोई उनसे दौलत भी नहीं मांगी, ना बेतकल्लुफ़ हुए, नज़र भर के ना देखी। घर आए तो बाप ने बात की, कहा लड़का तो शरीफ लगता है, बेटियां हैं, शादी तो करनी है, इसको घर में रखूं तो कैसे रखूं? ये भी एक नोट करने की बात है, चाहे सगा रिश्तेदार क्यों नहीं है, अगर आप बेटियों वाले हैं तो बेतकल्लुफाना माहौल में आप किसी के बेटे को अपने घर में नहीं रखेंगे, चाहे वो नंद का बेटा है या वो भाई का बेटा है या बहन का बेटा है। वो आपका भांजा भतीजा है, लेकिन आपकी बेटी का वो कज़न है, और कज़न से डरना और बचना चाहिए। चलिए, बाप ने बेटी का रिश्ता मांगा, आज हम क्या करते? नहीं करते ऐसा रिश्ता। चलिए अब देखिए मूसा क्या करते हैं, मान गए। मूसा की क्या फरमाइशें थी, जहेज में क्या देंगे? और घर तो आप देंगे ही ना, और गाड़ी तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, और आड़ों की घड़ी के बग़ैर तो मैं आपका दामाद बनूंगा नहीं। ये है वो मुकाम, दामाद के लफ्ज़ के साथ ऐसे थर थर कांपते हैं जैसे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। और वो कहते हैं और मानना नहीं है और देंगे नहीं, बेटी नहीं इनकी लेके आया। और एक जुमला जो मुझे इंतहाई नागवार लगता है, इनको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, यानी ससुर को जाकर धमकियाँ देते हैं दामाद कि तुम्हारी बेटी घर छोड़ जाऊँगा, ये कर सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्लीज़ आप ये मेहरबानी जल्दी कर जाएँ, हमें आप जैसे से जान छुड़ानी है। याद रखिए दोनों एक्सट्रीम्स हैं। किसी ने एक सवाल किया, एक मुबल्लिग थे, उनसे कहा कि दामाद के क्या हकूक़ हैं, तो नाम भी मैं उनका ले सकती हूँ, बड़ी खुली खुली बात करते हैं। कहते हैं कोई हकूक नहीं है, बेटा बन के बैठे, जो माँ बाप की खिदमत करनी होती है वो खिदमत करे, दामाद का कोई हक नहीं होता बल्कि उसके फ़राइज़ होते हैं। अपने माँ बाप की तरह लो। आज बेटियों को घर लाकर किसी की बेटी को जलील करना, रुस्वा करना, और फिर कहना कुर्सी लाओ, मेज़ लाओ, सोफ़े लाओ, और मैं सोऊँगा ही नहीं जब तक तुम्हारे घर से फर्नीचर नहीं आएगा, कैसे जलील करते हैं बाज़ दामाद ससुराल वालों को। और जहाँ रिश्ते दौलत और नाम और ख़ानदान के नाम पे होंगे फिर ऐसे ही होगा। फरमाया कि बेहतरीन सदका क्या है, फरमाया किसी बाप का अपनी बेटी या किसी भाई का अपनी बहन किसी के निकाह में दे देना, ये बेहतरीन सदका है। मुहद्दिसीन कहते हैं इसका मतलब क्या है कि दामाद को या बहनोई को अपने ससुर या जो भी उसका साला है उसके सामने ऐसे झुक के रहना चाहिए जैसे वो शख्स रहता है जिसको सदका दिया जाता है। तो अल्लाह ताला हमारे माशरे से ये खराबियाँ निकाल दें। और दूसरी तरफ आप सबको भी कहूँगी, आपके बेटे कहीं जाकर शादी आपने की, उनको वही सबक सुनाइए, वही पढ़ाइए जो आप अपनी बहू से चाहती हैं। क्या हम चाहते हैं बहू आए तो खिदमत करे, बहू आए तो मिल के रहे, प्यार करे। तो अपने बेटों को कहिए जिनके दामाद बने हो उनकी खिदमत करो, उनकी लाइटें ख़राब है ठीक कर दो। आज अल्लाह का बंदा कोई करने तो लगे, कहते तुम नीचे लग गए हो, तुम तो घर दामाद बन गए हो, अब इन्होंने तो तुम्हें नौकर बना लिए। तो याद रखिए ये बेकार और फजूल बातें, तुम तो जन मुरीद के रन मुरीद क्या बन गए हो, और ससुराल जाकर तो तुम हमें भूल ही जाते हो। नहीं, देखिए खिदमत करना सीखिए, और तुम तो ये हो गए और वो हो गए। अगर माएँ ये चाहती हैं ना कि आने वाली बहुएं उनकी खिदमत करें, तो उनको चाहिए अपने बेटों को सिखाएं कि वो भी जाकर अपने ससुराल में खिदमत करें और उनकी बेटियां भी जाकर ससुराल में खिदमत करें। असल बात यह है, हमने आज नबियों का अखलाक छोड़ा हुआ है। आज हमारे मर्दों का हाल क्या है और हमारी औरतों का क्या है, अल्लाह ताला इस मसले पर हमारी मदद कर दे और हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में। क्या सीखा? माँ बाप की खिदमत करनी है, सिरात मुस्तकीम के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी है, दूसरों से भलाई का मामला करना है, कोई भी काम करते हुए इंशाल्लाह कहना है, और अल्लाह सुबहान तआला से खैर तलब करनी है।